लोगों ने एक कर्म से समझिए कि आप कैसे अंतर करने के पहले कंटिन्यूस निषेक रचना थी, ऊपर से अपकर्षण करके भी द्रव्य नीचे आ रहा है और कांडक धातु के द्वारा भी नीचे आ रहा है। इस समय अपूर्वकरण से क्या पोजीशन हो रही है, उसी समय गुणश्रेणी रूप से वो रचना हो जाएगी। वो कैसे होती है वो हमने बताया, पहले समय में ये बात हुई, दूसरे समय में क्या होगा, वर्तमान निषेक उदय होकर चला जाएगा, गुणश्रेणी में से एक निषेक उदयावधि में एंटर होगा, गुण श्रेणी में से एक निषेक कम हुआ, पर दूसरे समय में द्रव्य असंख्या गुणा आकर्षित हो रहा है, क्योंकि स्थिति कांडक धात में भी असंख्या गुणा का कांडक होता है और आकर्षण में भी असंख्या गुणा बढ़ता है, तो वो सारा द्रव्य उसमें आ जाएगा गुण श्रेणी में और उदयावली में बढ़ जाएगा। तीसरे समय में और एक निषेक निकल जाएगा उदय होकर और वो गुण श्रेणी और एक समय से कम हो जाएगी। इसको कहते हैं गलितावशेष गुणश्रेणी, गलित यानी निकल गई, निर्जरा हो गई, और जो अवशेष यानी बची, यानी गलने के बाद जो बची यानी वो गुणश्रेणी छोटी छोटी होती चली जाएगी। समझ गए, गुणश्रेणी कितनी बनी थी अपूर्वकरण का, अपूर्वकरण के पहले समय में गुणश्रेणी तैयार हुई थी, कितने निषेकों में, अपूर्वकरण का काल प्लस अनिवृत्ति का काल प्लस और थोड़ा जो अनिवृत्तिकरण के संख्या से बहुत समान है, और जो थोड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ गुणश्रेणी शीर्ष कहेंगे। ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी ख्याल में आई तो आसान हो जाता है, यहाँ तक ख्याल में आई। अब उसमें से सभी कर्मों में ज्ञानावरण दर्शनावरण सभी में ऐसी गुणश्रेणी बनी है, तो ये कार्य कब तक चलेगा, ये गुणश्रेणी का, स्थिति कांडक घात का और अनुभाग कांडक घात का। अनुभाग कांडक घात यानी जो सत्ता में सभी निषेक पड़े हैं उसमें जो अप्रशस्त कर्मों का मैक्सिमम की ओर उत्कृष्ट की ओर जो स्पर्धक थे वो परमाणु थे, उनका अनुभाग घटकर वो नीचे की ओर जो परमाणु है उस समान हो जाते हैं, जहाँ के वहाँ पड़े हैं वो। जब हम अनुभाग की बात करते हैं वो जहाँ के वहाँ तब उसको सोचना, जब स्थिति की अपेक्षा नीचे ऊपर कहेंगे तो स्थिति की बात सोचना। ये दिन के बाद ख्याल में, तो इस तरह से ये कार्य अपूर्वकरण के द्वारा चला, अनिवृत्ति कर्म में भी यही कार्य द्वारा चल रहा है। इस तरह से अनिवृत्तिकरण के संख्या बहुभाग बीत गए। अब अनिवृत्तिकरण का संख्यात्मा भाग शेष रहा, तब क्या होता है, तो ये तो चल रहे, तब जो ये नया स्थिति कांडक धात शुरू होगा, एक स्थिति कांडक धात के लिए जितना समय लगता है उतने ही समय में अंतर करने का कार्य पूरा होगा। यानी वहां बाजा होता है अनुभाग कांड घात भी चल रहे हैं, सिद्धि कांड घात भी चल रहे हैं, सामान्य अपकर्षण भी चल रहा है, गुणश्रेणी वगैरह गलितावशेष वो चल ही रही है, और अभी नया कार्य क्या होगा, दर्शन मोहनी में अंतर करने का कार्य चलेगा। अब हम प्रथमोक्षम की बात करें इसलिए मिथ्या को कर्म वहां पड़ा है, तो उसमें अंतर करने का कार्य चालू हो जाएगा। अंतर कहाँ किया जाता है, अभी जो अनिवृत्ति कर्म का रिमेनिंग काल है ना, उतना तो निश्चय रूप से वहाँ रहते हो गुणश्रेणी, और वो गुणश्रेणी शीर्ष जो टॉप वाले थोड़े एक्स्ट्रा जो लिए थे वो, और उससे ऊपर के बहुत सारे निशे, अभी इनका अभाव किया जाता है। वो एक समय में तो नहीं होता, पहले समय में थोड़े परमाणु नीचे आए, अब वो प्रथमोक्षम समय तो उन्हें मिथ्यात्व का बंध भी अनुसूचीकरण के अंत समय तक है, यानी नया मिथ्यात्व भी बन रहा है। वो नया जो बंध हो रहा है उसकी आबादा तो अंतर की भी ऊपर तक चली है, और उसके ऊपर उसकी निषेक रचना भी होती है। यानी जब हम अंतर करते हैं तो अंतर में जो निषेक है उसके कुछ परमाणु नए बंध के साथ ऊपर भी चले जाते हैं, और कुछ परमाणु नीचे प्रथम स्थिति में आ गए। यहाँ जो अंतरवाद जो बात यहाँ पर नहीं बताई है, यहाँ जो बताई है मैं ये पीछे, इस तरह से पहले समय में कुछ परमाणु नीचे ऊपर हो जाते हैं, दूसरे समय में, तीसरे समय में, जितना वो अंतर्मुख काल है अंतर करने का काल केंद्र है, उतने काल में अंतर करने का कार्य पूरा हो गया। उस जीव को कहीं इसने अंतर करने का कार्य किया, ये अंतर्कृत जीव है, ऐसा कहीं अंतर कर लिया है, पर अंतर कर लिया अभी समय तो नहीं हुआ है, अंतर कर दिया है अभी तो वो मिथ्या दृष्टि है, अभी तो उसके जो जो नीचे जो अनिवृत्तिकरण का जो शेष काल है तब तक वो मिथ्या दृष्टि रहने वाला है। मिथ्यात्व का उदय भी है, मिथ्यात्व का बंद भी चल रहा है, फिर भी उसने अंतर करके रखा है। ये पोजीशन क्या है, ये जो यहाँ लिखा है, ये नीचे इतने निषेक है जो मिथ्यात्व के है, बीच में अंतर है, और ऊपर वो द्वितीय स्थिति पड़ी है। यानी अंतर करने के बाद ये पोजीशन है। अब इसके आगे थोड़ी बात 83 पेज निकालना आपको, और 86 राधा की टीका देखनी है। के ऊपर इतना ही लिखा है कि स्थिति कांडक करने के लिए जितना काल लगता है उतने ही काल में अंतर किया जाता है, तो उसको अंतरकरण काल भी कहेंगे। अब उसका और 86 की टीका में हम पढ़ेंगे आगे। गुणश्रेणी आयाम में जब अपूर्वकर्म के स्टार्टिंग में गुणश्रेणी आयाम बनी थी तो अपूर्वकर्म का काल, अनिवृत्तिकर्म का काल प्लस एक्स्ट्रा, तो गुणश्रेणी आयाम में, आयाम में उसकी लंबाई, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण से जो अधिक प्रमाण, वो अधिक प्रमाण कितना था, अनिवृत्तिकरण का संख्यात्मक भाग मात्र कहाँ था, उसका नाम यहाँ यहाँ ये इस पोजीशन पे गुणश्रेणी शीर्ष है। कहीं अन्य पोजीशन में किसी अन्य को गुणश्रेणी खाली एक निषेक को कहते वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ क्या आता है, जो एक्स्ट्रा अनेक निषेक थे उस सबको मिलकर यहाँ गुणश्रेणी शीर्ष कहते। यहाँ गुणश्रेणी शीर्ष के सर्व निषेक, जितना अधिक प्रमाण था वो सारे निषेक, और इससे संख्या गुणा, यानी इसके ऊपर इससे मान लेते ये 10 निषेक गुणश्रेणी शीर्ष के, और उसके ऊपर के उसके 25 गुणा, तो 10 को 25 गुणा तो 250 और ऊपर के निषेक, इस तरह से गुणश्रेणी शीर्ष के ऊपर वर्ती है इसे ऊपरीतम स्थिति के सर्व निषेक, इन दोनों को मिलाने पर अंतरायाम होता है। अंतरायाम यानी अंतर की लंबाई, जितने निषेकों का अभाव करके अंतर बनना है उसको कहेंगे अंतरायाम। गुणश्रेणी शीर्ष प्लस उससे संख्या गुणा से ऊपर के निषेक, इतने का अभाव करके अंतर होने वाला है। अब वो अंतर होने वाला है तो उसका द्रव्य, उसके परमाणु कहाँ चले जाएंगे वो बात बताएंगे। इतने निषेकों का अभाव करता है वह भी अंतर्मुहूर्त मात्र है, यानी जो गुणश्रेणी का आयाम है उसका प्रमाण भी अंतर्मुहूर्त है। अभी अंतर्मुहूर्त कोई छोटे कोई बड़े होते हैं उसकी बात अभी यहाँ नहीं लेती, अंतर्मुहूर्त मात्र जो एक एक समय करके अंतर्मुहूर्त जितने निषेक है उतनों का अभाव करके अंतर करने वाला है। यहाँ शीर्ष के नीचे, शीर्ष तो अंतर में चला जाएगा, शीर्ष के नीचे अनिवृत्तिकरण के अवशेष काल मात्र, गणितावशेष गुणश्रेणी आयाम अनिवृत्तिकरण के संख्या पे भाग प्रमाण है, वह भी शीर्ष से संख्या गुणा। अभी हमने शीर्ष 10 समय का लिया था मान लेते हैं, और ऊपर और 25 पीछे किए थे, अब नीचे जो उसकी प्रथम स्थिति बची है अंतर के नीचे, अंतर में क्या गया गुणश्रेणी शीर्ष और उसके ऊपर के कुछ नीचे, और नीचे जो पहली स्थिति बची है वो भी कितनी है, वो हमने 10 मान लिए थे शीर्ष, तो उससे भी संख्या बढ़ा, मान लेते नीचे 40 निशेक और नीचे भी बच गए, शीर्ष से संख्या थोड़ा नीचे भी बचे, यानी इतने समय भी पहले स्थिति के बाकी है। वहां अंतरायाम में स्थित निशेकों के द्रव्य की, ये अंतरायाम में जो निशेक अभी नक्की हुए ना, इतने का अभाव करना है, तो उसमें क्या हुआ, पहले समय में कुछ द्रव्य अन्यत्र दिया जाएगा, दूसरे समय में और दिया जाएगा, तीसरे समय में और दिया जाएगा, पहली खाली, दूसरी खाली, तीसरी खाली, ऐसे उसके नाम है। तो यहाँ कहते हैं, यहाँ थोड़ी करेक्शन है, मैं बताऊंगी आपको। नीचे से दूसरी लाइन, अंतरायाम में स्थित निशेकों के द्रव्य की प्रति समय ये असंख्यात गुणा क्रमयुक्त चाहिए, वहाँ अनंत गुणा लिखा गया है, वो अपने अपने पुस्तकों में आप करेक्शन करना। पेज नंबर 83 नीचे से दूसरी लाइन, वहाँ जो राइट साइड से 1 2 3 4 पांचवा शब्द है अनंत गुणा, उसके बदले में वहाँ असंख्यात गुणा लिख लेना अपने अपने पुस्तकों में, क्योंकि पहले समय में जितने परमाणु वहाँ से निकले, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, क्रमयुक्त जो फाली, उसको फाली कहते हैं, लॉट को फाली कहते हैं, उनका ग्रहण करके उस समय बंधने वाला जो मिथ्यात्व कर्म, उस समय मिथ्यात्व कर्म भी बन रहा है, जहाँ मिथ्यात्व का उदय है, तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है, जीव को सम्यक तो होगा, ऐसा कभी नहीं होगा तीन काल में। मिथ्यात्व का उदय तो जीव के भावों को बता रहा है, उसके कारण जीव मिथ्यात्व कुछ नहीं है, यहाँ जीव मिथ्यात्व परिणाम उसका अभी चल रहा है, भले वो सूक्ष्म सूक्ष्म हो रहा है, क्योंकि उसका अनुभव इतना घटकर उदय में आ रहा है, तो मिथ्यात्व भी कितना सूक्ष्म हो रहा है, टोडरमन जी के भाषा में कहना है तो सूक्ष्म मिथ्यात्व भी टाल नहीं होगी, तो इतना मिथ्यात्व चलेगा ना रहेगा, तो तब तक समय तो नहीं होगा। ये हमने जो अनुभव के पर्वत देखे ना, वो मिथ्यात्व में शैल वाले, अस्थि वाले, ऐसे बहुत जिसको कहेंगे उत्कृष्ट अनुभव वाले स्पर्धकों का उदय होगा, तो वो जीव तो तुम्हारी जिनवाई सुनने भी नहीं पसंद करेगा, उल्टा विरोध करके आपको विघ्न डालेगा। जिसके थोड़े मिथ्या तो मंद हुए हैं, ऐसे ही जीव ये बात सुनेंगे, समझेंगे, इनकी कोशिश करेंगे और आत्मा संबंधी उसकी रुचि से सुनेंगे। अभी यहाँ तो बात तो एकदम टॉप फोर से कर्म लब्धि की बात है, यहाँ तो बिल्कुल अभी वो तो समय तो लेकर ही रहने वाला जीव है। तो यहाँ कहते हैं असंख्यात गुणा क्रमयुक्त जो खाली, ये करेक्शन किया ना, उनका ग्रहण करके उस समय बंधने वाला जो मिथ्या तो कर्म, उसके स्थिति का आबादाकाल छोड़कर, क्योंकि जो प्रत्येक समय में जो बंधे उसका आबादाकाल भी होता है, तो यहाँ आबादाकाल कितना होगा, वर्तमान समय से लेकर वो अंतर को छोड़कर और ऊपर बहुत सारा छोड़कर इतना आबादा होगा और उसके ऊपर बंध होगा, क्योंकि यहाँ का मिथ्यात्व का बंध कितने समय वाला होगा, कितनी स्थिति बंधेगी, अंत कोड़ा कोड़ी सागर है यहाँ पर भी, है ना, भले जो सत्ता में पड़ा है उससे छोटा है, परंतु है तो अंत कोड़ा कोड़ी सागर का ही बंध है, अंतिम समय तक तो ये बंध रहा है, तो उसका जो बड़ा अंतर्मन प्रमाण उसकी आबादा होगी, तो वहाँ मिथ्या तो के उस समय बंधने वाले जो निषेक है उसमें यहाँ का द्रव्य ऊपर चढ़ेगा। तो आबादा काल को छोड़कर अंतरायाम समान निषेकों के नीचे और ऊपर के जो निषेक उनमें निक्षेपण करता है, क्योंकि जो अंतरायाम समान निषेक उसी में वो द्रव्य नहीं जाएगा, वो तो ऊपर और नीचे, क्योंकि अंतर करना है ना, ऊपर से आकर्षित होकर जो आने वाला द्रव्य है वो भी जहाँ अंतर करना है उसको नाम कर नीचे आएगा, और जो वहां से ऊपर चलने वाला द्रव्य भी अंतर को नाम कर एकदम ऊपर चलेगा, बीच में नहीं जाएगा, क्योंकि अभी जिनका अभाव करना है उन निषेकों में फिर द्रव्य नहीं दिया जाता। इस तरह से एक एक समय करके अंतर मूर्त में अंतर चांद तैयार हो जाएगा। अब कहते अंतरायाम समान काल संबंधी निक्षेपों में, निषेकों में निक्षेपण, निक्षेप करने में डालना, उसमें वो नहीं डालेंगे, कहाँ डालेंगे, पहली स्थिति में या दूसरी स्थिति में, वहां अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तो मिथ्यात्व ही का, देखो अनादि मिथ्या दृष्टि की सत्ता में एक मिथ्यात्व कर्म ही है और उसी का वो प्रथमोत्तम करने जा रहा है, तो मिथ्यात्व के द्रव्य कोई ऊपर नीचे डालेगा, और जो सादी मिथ्या दृष्टि है, देखो सादी मिथ्या दृष्टि किसको कहना, जिसने कभी प्रथमोक्षम प्राप्त किया था, उसने फिर मिथ्या तो में से तीन प्रकृति को भी तैयार होगी, मिथ्या तो समय मिथ्या तो समय प्रकृति, और वो जीव जब मिथ्या समय चला जाता है तो देखो, जब मिथ्या तो अंतर कोड़ा कोड़े सागर का था, जब प्रथमोक्षम प्राप्त किया तो मिथ्या तो की स्थिति कितनी थी, द्वितीय स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें से समय मिथ्या तो बनेगा वो भी अंतर कोड़ा कोड़ी सागर, उसमें समय प्रकृति बनेगी वो भी अंतर कोड़ा कोड़ी सागर, ये पोजिशन है, तीनों की स्थिति समान है। अब वह जीव मिथ्या तो में चला गया, औषध समय के बाद मिथ्या तो में चला गया, अब पोजिशन क्या होगी, मिथ्या तो में जाने के बाद अब ये जो समय मिथ्या और समय प्रकृति है उसका उल्टा संक्रमण चालू हो जाता है, मिथ्या तो परिणमित होते रहते हैं। सत्तर कोड़ाकोड़ी अभी है ही उसकी, क्योंकि प्रथमोक्षण समय तो नहीं, सत्तर कोड़ाकोड़ी के साथ प्रथमोक्षण समय तो नहीं होता, क्योंकि प्राय के लब्धि में बड़ा स्थिति कांड धार करके उसने अंत कोड़ाकोड़ी स्थिति बनाई थी, बिल्कुल एक बड़ा स्थिति कांड धार थे बहुत, आप प्राय के लब्धि की बात फिर पढ़ना तो ख्याल में आ जाएगी बात, तो प्रथमोक्षण की बात कर रही हूँ, वेद समिति की बात अभी उसमें और विशेषताएं नहीं मैं बताऊंगी, डिफरेंसेस हम प्रथमोक्षम की बात कर रहे हैं, उसी को अच्छी तरह से समझना है। तो जो वो जीव मिथ्या दृष्टि हुआ है तो मिथ्या समय आते ही समय उसके तीनों ही अंतर कोड़ा कोड़ी सागर के थे, अब ये जो दो प्रकृतियां है वो उल्टा उद्वेलना जिसको कहेंगे एट ए टाइम, उसके भी कांडक रूप से वो उद्वेलना होती है, पल्ले का संख्या भाव, पल्ले का संख्या भाव, पल्ले का संख्या भाव, इतना उसकी स्थिति घटती चली जाती है, मिथ्यात्व रूप होती है। अब मिथ्यात्व में आने पर फिर मिथ्यात्व का बंध होगा कि नहीं होगा, वो कितना होगा, अंतर कोड़ा कोड़ी से लेकर सत्तर कोड़ा कोड़ी तक कुछ भी हो सकता है, यानी मिथ्यात्व की स्थिति तो अभी लंबी है, जितना बंधेगा उतनी लंबी है, और बाकी दो प्रकृति वो तो निरंतर वो घटती चली जाती है, परंतु असंख्यात वर्षों तक जब तक उसकी स्थिति घटकर सागर या कुछ सागर इतनी नहीं रह जाए तब तक वो जो सम्यक्त्व तो प्राप्त कर सकता है, कौन सा, वेदक सम्यक्त्व, यानी तीन प्रकृति है उसको सादी मिथ्या दृष्टि कहते हैं, वो जीव डायरेक्ट पहले गुण स्थान से वो दो प्रकृति ने मिथ्यात्व और समय मिथ्यात्व का अप्रशस्त उपशम करेगा और समय प्रकृति का उदय करेगा और डायरेक्ट वो वेदक समय दृष्टि होगा, असंख्यात वर्षों तक वो उपशम सम्यक्त्व नहीं करेगा, करेगा तो वेदक सम्यक्त्व करेगा, परंतु वो लंबे काल तक जो मिथ्यात्व में ही रहा है उसकी उद्वेलना होते 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 पोजीशन क्या है, अब मिथ्यात्व तो बहुत अंतर कोड़ा कोड़ी से लेकर सत्तर कोड़ा कोड़ी तक कुछ भी है और बाकी दो गढ़ते 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 सागर जिसने मान लेते आ गए हैं, अब वो तीनों को एक साथ उपशमा सकता है, इसके पहले नहीं, इसके पहले सम्यक्त्व तो प्राप्त नहीं करता ऐसा नहीं कहा, सम्यक्त्व तो प्राप्त करता है परंतु वो औक्षमिक समय तो नहीं है, एक बार प्रथमोक्षम होने के बाद जो जीव गिरकर मिथ्यात्व में आता है फिर दोबारा उसको प्रथमोक्षम समय तो कब करेगा, असंख्यात वर्षों के बाद, यानी दो प्रथमोक्षम के बीच में कितना अंतर जाता है तो असंख्यात वर्ष, जिसका प्रमाण है पल्ले का असंख्यात, यानी तब तक वो सम्यक्त तो नहीं करता ऐसा नहीं था, सम्यक्त तो दोबारा अंतर्मुख में रिपीट हो सकता है, यानी अभी कोई समय दृष्टि गिर कर मिथ्यात्व में आया और बहुत छोटा अंतर्मुख में फिर वो समय तो प्राप्त किया, परंतु वो वेदक समय तो होगा, हाँ वो सागर के करीबन आ जाएगी, उसको सागर या पुत्र सागर कहते हैं, उतनी आती है तब अब समय तो करेगा तो तीनों को उपशमित करके फिर करेगा, जैसे द्वितीय उपशम में तीनों का एक साथ अंतर किया था वैसे यहाँ तीनों का एक साथ अंतर करके उपशम करेगा, ये यहाँ कहना चाहते हैं, करण के बिना तो होगा ही नहीं, दोबारा प्रथम उपशम करना है तो सारे पांच लब्धि फिर दोबारा होगी, वेदक करना होगा तो भी दो करण होते हैं, परंतु ऐसा होता है बिल्कुल एक अंतर्मुख में आया और फिर चला गया तो बिना करण के भी हो सकता है, अभी उसके विशेषताएं हैं वो जो अपनी लास्ट टाइम हमने दी नहीं थी वैसे, और ये लब्धि सार में है उसका वर्णन, अभी तो हम अंतर के बाद वो जो कन्फ्यूजन चल रहा है उसकी बात यहाँ अपनी हो रही है। देखो पेज नंबर 84 हाँ, परंतु उसकी विशुद्धि उतनी हो जाएगी दो कर्मों में जो उसकी तीन बने होती है, ऐसा नहीं कि इसकी विशुद्धि कम है, अब वो भी उसके लिए क्या दलील है क्या प्रूफ है अभी उसके लिए थोड़ा तो अलग विषय हो जाता है, इसलिए उसकी चर्चा अभी नहीं करें। पेज पर आया नीचे से ये तीनों दशमों का अंतर करता है, लेकिन ऊपर से चौथी लाइन अंतर करने के काल के प्रथम समय से लेकर, अंतर करने के काल के प्रथम समय से लेकर जो अनिवृत्तिकरण काल का संख्या का भाग मात्र काल अवशेष रहा उसको संख्या का भाग लेकर वाई भाग मात्र तो अंतरकरण काल है। नहीं, क्या कहना चाहते हैं, जब अंतर शुरू किया था अंतर मूलकर अभी काल बाकी था अनिवृत्तिकरण का, उसमें से एक छोटा अंतर मूल है वो अंतर करने के लिए लागू हो गया, यानी अभी जो रिमेनिंग है वो उसका काल भी अंतर मूल है, यानी अंतर पूर्ण हुआ, अंतर करने के लिए कितना समय लगा अंतर मूल वो बीत गया, अभी अंतर करने का कार्य पूरा हुआ, अभी कितना शेष काल बचा है अंतर करने के लिए जितना काल लगा उससे भी संख्या गुणा काल अभी भी शेष बचा है, यानी अभी अंतर करने का कार्य पूरा हुआ है, करने का कार्य पूरा हुआ है और ये नीचे कुछ निषेध बाकी है, यानी अंतर करने के बाद पोजीशन क्या है, ये प्रथम स्थिति में कुछ निषेध है जिसका प्रमाण है अंतर मूल, उसके ऊपर है अंतर किया हुआ अंतर है और उसके ऊपर द्वितीय स्थिति है जो अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, यह अंतर पोजिशन ख्याल में आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर अवशेष बहुमान मात्र प्रथम स्थिति का काल है, उसके ऊपर जिन निषेकों का अभाव किया वह अंतर मूर्त मात्र आयाम है, जो मेरे पीछे भी जो ड्राइंग है यही बता रहा है, नीचे ये प्रथम स्थिति अभी रिमेनिंग काल है अनिवृत्तिकरण का, ये भी अंतर मूर्त प्रमाण अंतर का आयाम है और उसके ऊपर ये द्वितीय स्थिति जो है वो पूरी अंतर कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। अब 87 की टीका, इस तरह एक स्थिति कांडकोत्क्रम काल के समान काल के द्वारा किया है अंतर जिसने, ऐसा अंतर कृत हुआ, उसे एक विशेषण बना दिया, विशेषण समझते हैं, यानी उस जीव को क्या कहेंगे जिसने ऐसा कार्य किया, क्या किया अंतर करने का कार्य पूरा कर दिया, कितने काल में और वहां के स्थिति कांडक के लिए जितना काल होता है उतनी काल में उसने अंतर कर दिया, उस जीव को क्या कहेंगे अंतरकृत, वो अंतरकृत केवल वो अलग है ना, उसकी बात यहाँ कंफ्यूजन मत करना, वो उपसर्ग से वो उपशम श्रेणी में मरकर वो उसमें चले जाते हैं अंतर वगैरह में, वो उसकी बात नहीं है, अंतरकृत में उपसर्ग अवस्था में केवल ज्ञान प्राप्त कर, वो बात अलग है। पूरा एक नहीं होता, अपूर्वकरण के स्टार्टिंग में जो स्थिति कांडक शुरू हुआ ऐसे हजारों हजारों क्या करोड़ों करोड़ों स्थिति कांडक घर होते हैं उसमें, यहाँ का जो स्थिति कांडक घर का जो काल है उतना ही अंतर का काल है, तो कितना ही उसमें देना और कुछ नहीं। अभी अंतर करने के बाद क्या होता है इसकी बात अभी यहाँ पढ़ेंगे, देखो उस काल के अनंतरवर्ती जो समय है वह प्रथम स्थिति का प्रथम समय है, क्या कहा, ये अंतर करने का कार्य पूरा हुआ, ये अंतर पड़ा, ये प्रथम स्थिति का प्रथम नीचे का निशे को उदय रूप है, ये मिथ्यात्व के परमाणु है, मिथ्यात्व की रचना है, ये नीचे का अंतर हुआ ना, अभी अभी अंतर होने के पश्चात का समय है, वह है प्रथम स्थिति का प्रथम निशे उदय में, उदय तो चल रहे हैं ना, हर समय उदय तो चल रहा है, पहले भी चल रहा था, जब अंतर हो रहा था तभी वहां का उदय तो चल ही रहा था, एक एक निशे कर ही रहा था, अब इसका उदय हो रहा है, उससे लेकर उसी के अंत समय तक प्रति समय असंख्या गुणा क्रम सहित जो अंतरायाम के ऊपरवर्ती निषेध उनरूप जो द्वितीय स्थिति, अभी क्या कहना चाहते हैं, ये प्रथम स्थिति है, बीच में अंतर है, उसके ऊपर द्वितीय स्थिति, अब द्वितीय स्थिति में से प्रति समय असंख्या गुणा असंख्या गुणा असंख्या गुणा क्रम से द्रव्य नीचे आता जाएगा, अंतर को लांग कर जम करके वो द्रव्य नीचे दिया जाता है, ये कहना है। उन रूप जो द्वितीय स्थिति उनमें स्थित दर्शन मोह के द्रव्य को पीठ में कहे हुए, पीठ यानी वो जो भूमिका वाला जो है, वहां जो बताया था इसका कुछ वर्णन किया था, वहां जो गुण संक्रमण भागार नाम का जो विशिष्ट संख्या है उसका प्रमाण बताया था, उसका भाग देने पर जो प्रमाण आया उतने द्रव्य के समूह रूप जो प्रथम वो फागी उसको उपशमाता है। देखो उपशमाने का कार्य अब शुरू हुआ। यहाँ प्रथम निषेक उदय रूप है, ये उदय रूप होकर खेलेगा। यहाँ क्या पोजीशन है, कुछ द्रव्य तो नीचे आएगा कर जंप मार, अपकर्षण कहते हैं। उसी समय यहाँ क्या हो रहा है इन परमाणुओं में, तो कहीं उनका उपशम चलेगा। पहले समय में कितने उपशमित होगा, तो जो टोटल यहाँ का द्रव्य है, द्रव्य में टोटल सभी निषेकों में मिलकर जितने परमाणु है उसको पर्टिकुलर भागार से भाग देंगे, पर्टिकुलर संख्या से भाग देंगे, जो एक भाग की वैल्यू होगी उसमें पहले समय में उपशमित होगी। द्वितीय उपशम का कार्य द्वितीय स्थिति में हो रहा है, पहली स्थिति पूरी ही उदय रूप होने वाली है, इनका उपशम नहीं होगा।
लेकिन आ रहे हैं
थोड़े थोड़े आएंगे, पूरे नहीं आ रहे, बाकी निषेक ऊपर बढ़े हैं। पर उपशम शुरू होता कुछ में उपशम हुआ, बाकी तो यूज है ना, अभी फ्री है। कौन सा दोनों का ना, 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 ना। पहले स्थिति अंतर होता है और ये अंतर थोड़ा थोड़ी सागर प्रमाण, उसमें तो पूरा मोनी का द्रव्य उसमें पड़ा है, अब वही उपशमित हो जाएगा, उदय में नहीं आएगा, बस पड़ा रहेगा। एक अंतर मुख के लिए वो कुछ गड़बड़ी नहीं करने वाला है। ये जो नीचे का है वो उदय में होकर निकलने वाला है, और ये भी अनुवाद विहीन होकर है। मिथ्या तो अभी मंद नहीं के बराबर जैसे है, तभी भी उदय है, बंद भी है, और तभी तो समय से होगा। और ऊपर के जो है वो एक समय में थोड़े उपशमित हुए, दूसरे समय में और असंख्यात गुणा उपशमित हुए, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणा उपशमित हुए। एक अंतर्मूल काल के द्वारा, यानी जितना ये अंतर्मूल का काल है उतने ही समयों में ये उपशमने का कार्य चलेगा। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम ही उतना है, और बिल्कुल यहाँ अंतिम निशे उदय रूप होकर खिल जाएगा और वहाँ सारे उपशमित हो जाएंगे। हाँ, जैसे वो द्वितीय उपशम नहीं समझ में आ रहा था ना, इसलिए प्रथम उपशम की बात थी। यहाँ एक ही प्रकृति पर हमको समझना, ये आसान हो जाएगा, इतनी बात वहाँ हो गई। उपशम का कार्य ऐसे ही हुआ, बाय द टाइम प्रथम स्थिति में से निषेक उदय में आते हैं उसी समय में ऊपर जो कुछ उपशमित हुए, उपशमित हुए वो अभी जगह छोड़कर नीचे नहीं आते, पर जो अभी फ्री है उपशमित नहीं हुए वो कुछ काल तक उसका भी वो जंप मारकर नीचे भी कुछ कुछ आ रहे हैं, उसमें भी ये बातें हो रही है, तो ये पढ़ रहे हैं। ये विशेषार्थ में मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश, ये विशेषार्थ पंडित रोडानंद जी ने नहीं लिखा, मैंने लिखा इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं हो, मेरे से कुछ गलती भी हो सकती, उसको तिरछे लेटर में अलग से लिखा। देखो, अंतर करने के पश्चात प्रथम स्थिति के निषेक उदय में आते हैं, जब तक एक एक निषेक उदय में आता रहता है तब तक प्रति समय द्वितीय स्थिति में स्थित दर्शन मोह के द्रव्य को उपशमाता है। प्रत्येक समय में असंख्यात गुणा क्रम से द्रव्य को उपशमाया जाता है, द्रव्य नहीं परमाणु, उसका प्रमाण लाने के लिए द्वितीय स्थिति के द्रव्य को टोटल नंबर ऑफ परमाणु जितने सारे निषेकों में मिलकर है उस द्रव्य को गुण संक्रमण भागार का भाग देते, विशिष्ट संख्या का भाग देते, जिसका प्रमाण पीठ बंध में कहा है। ये लब्धिसार की पीठी का जो भूमिका है उसमें ये बात बताई। अब उपशम किसे कहना, वो बात 85 पेज पर है। उदय आदि होने के अयोग्य करना वह उपशम करना, यानी वो उदय में भी नहीं आएगी, अभी वो जो उपशमित है वो अपनी जगह छोड़कर उसका आकर्षण भी नहीं होगा, उदय गिरना कुछ नहीं होगी उसके, तो वहां पड़े रहेंगे। तो उदय आने के अयोग्य करना इसको कहेंगे उपशम। अंतर को उपशम नहीं कहा, वो जब अभी उपशम इस समय तो वो टाइम है, यही तो बात बता रही है। अभी उपशम किए बिना उपशम इस समय तो कहां से होगा, अभी उपशम नहीं किया है, अभी तो उदय चल रहा है। क्या कहा, जब अंतर किया है उपशम अभी नहीं किया, उपशम करने का कार्य शुरू है, पूर्ण रूप से उपशमित नहीं हुए जब, यहाँ तो उदय ही चल रहा है। तो मिथ्या तो नाम का उदय भाव चल रहा है कि सम्यक नाम का उपशमी भाव चल रहा है, बोलो। मिथ्यात्व का उदय है ना, तो मिथ्यात्व उदय रूप चल रहा है, सम्यक तो हुआ नहीं उसको। सम्यक तो कब होगा, पूर्ण प्रथम स्थिति फिर कब निकल जाएगी, तब जाके सम्यक तो होगा। यही बात इसीलिए मैं ये विषय आज फिर दोबारा लिया, अंतर किया तो उक्षम नहीं हुआ उसको, सम्यक तो नहीं हुआ अभी, अभी तो उसके समय मिथ्यात्व का उदय चालू है, ये भी मिथ्या दृष्टि है, ऑन द वे है, अभी करण लब्धि मांडी है, अंतर किया है, तो अंतर अभी वो सब पहली स्थिति छूट जाएगी एक एक करके, और वो समय दृष्टि होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। हाँ, इसी को सम्यक तो सन्मुख कहेंगे, करण लब्धि में एंटर होने के बाद। ये तो हम सारे सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है, ये समय तो सन्मुख हुआ है, अभी वो लेके ही रहेगा। बंद भी है, मिथ्यात्व का नया बंद भी चल रहा है, अंतिम समय तक बंधेगा, जब बाकी सारे उपशमित हो जाएंगे ना, तो लास्ट लास्ट में बंधा हुआ मिथ्यात्व भी छुट्टा पड़ा है, परंतु वो भी बाद में वो उपशमित हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। नहीं तो आप कहेंगे नया नया बंधा हुआ वो उदय में आएगा, तो चिंता नहीं, वो भी उपशमित होने का सारी बात भी हो जाएगा। हाँ, आबादा काल बड़ा है, यहाँ जो मिथ्यात्व बन रहा है ये वर्तमान समय से लेकर कितनी बड़ी तो आभारा हो गई, और उसके ऊपर वो समय प्रबंध की रचना है, वो बहुत बड़ा है। बिल्कुल द्वितीय स्थिति वाले नहीं, पहली स्थिति वाले, पहली स्थिति वाले समाप्त तो हो गए, तब भी जाके वो समय तो प्राप्त करेगा। देखो, नीचे का एक समय गल गया, दूसरा गल गया, अब यहाँ नई निषेक रचना तो नहीं हो रही है, ऊपर से द्रव्य भी दिया जाएगा तो ऑलरेडी जो निषेक है उतना में ही दिया जाएगा, उसके अंदर नए निषेक तो बनेंगे नहीं, तो एक एक निषेक यहाँ से कम होने वाला है, तो एक गल गया दूसरा बोले, जब अंतिम निकल गया उदय रूप है, तब वो मिथ्यात्व का अंतिम समय है, उसके बाद वहाँ कोई निषेक ही नहीं है, तो जिनने समय को प्राप्त किया, अभी इसी को पढ़ना है अपने को। ये गुण संक्रमण भागा नाम का एक विशिष्ट संख्या है, ये वैल्यू उसके वो पर्टिकुलर संख्या है, उसको कहते ही गुण संक्रमण भागा, ये यहाँ गुण संक्रमण होना चाहिए, जरूरी नहीं। उपशम जो पहले समय में कितना उपशम हुआ, गुण संक्रमण के लिए जिस भागा से भाग देकर संख्या निकालते, वो संख्या निकालने का एक तरीका है, ऐसे अलग अलग भागा होते हैं, गुण संक्रमण होता ही नहीं। यहाँ उपशम हो रहा है, पहले समय में कितना उपशम होता है तो इतने द्रव्य का, दूसरे समय में उससे असंख्या, तीसरे समय में उससे असंख्या, ये पर्टिकुलर संख्या का नाम है गुण संक्रमण भागा। मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दूँ, पर्टिकुलर इस संख्या का नाम गुण संक्रमण भागा है, वो यहाँ गुण संक्रमण होना चाहिए ऐसा उसका अर्थ नहीं है। कितना द्रव्य आकर्षित होता है उसके लिए कहेंगे आकर्षण भागा है, इससे भाग देने पर इतना द्रव्य आकर्षण होता है, और आकर्षण भागा से भाग देने पर उतना ही द्रव्य उत्कर्षण होता है, ये उनके नाम है अलग अलग। अभी हम लोग गणित में नहीं जा रहे ज्यादा उलझन में, अभी हम यहाँ प्रथम ऑप्शन की बात देख रहे थे, पेज नंबर 85।
बंद होगा तो उसके साथ भी उसको उत्सव भी तो करना पड़ेगा, तो भले उदय नहीं दिखा रहे लेकिन उदय तो कर सकता
है। नहीं, अभी जो अंत अंत में बन रहा है, एक एक रूल ऐसा है, बंधने के बाद आवली में उनमें कुछ नहीं होता एक बार, तो अन्य कर्मों में हमने देखा था उदीर्णा भी तो हो सकती हो गया वगैरह, पर अभी जो प्रथम उपशम समय तो प्राप्त कर लिया है, जितना अनिवृत्तिकरण में उसकी विशुद्धि थी उससे भी गुण संक्रमण काल है, उसमें विशुद्धि और उसकी प्राइज होने वाली है, तो उस काल में उसका उपशम हो जाता है, एक ही समय करके उनका भी उपशम हो जाता है।
मान लीजिए एक उपाय के ऊपर उस जीव ने बहुत ज्यादा तीव्र मिथ्यात्व का बंध किया, प्रथम
प्रथम स्थिति में आता ही वो तीव्र मिथ्यात्व कब का चला गया, इतने बार वो अनुवाद कांडघात हो गए। हाँ,
मान लीजिए वो मिथ्यात्व का किया, उधर मिथ्यात्व का उदय भी है,
उदय है, पर कैसा उदय है, कितना मंद उदय है, इतना मंद उदय है तो वहाँ बंधने वाला कितना मंद बंधेगा,
तो फिर उसके निशे
दूसरी स्थिति में बने,
इधर नहीं,
इधर नहीं, अभी उपशम शुरू हुआ है, परंतु यहाँ तो यहाँ तक तो आबादा है, इसके ऊपर कुछ निषेक बनेंगे, और वो जो कुछ निषेक बनेंगे वो अत्यंत मंद अनुभव वाले होंगे, क्योंकि अभी जितना अनुभव का उदय है उस प्रपोर्शन में उसका अनुभव का बंदगी होगा। स्थिति तो जो टोटल स्थिति से नीचे अंतर कोड़ा कोड़ी सागर जितना सत्व है उससे थोड़ा कम हो, यानी उसके संख्या पे भाग प्रमाण कर लेगी। थोड़े समय प्रबंध बन देगी ना कि लास्ट लास्ट दो अवधि जब बाकी था तब जाके उसका जो कुछ अपर्शन रुक गया था उसके पहले वाले सारे उपशमित हो गए। अंतिम अवली या दो अवली के निश्चित फले बचेंगे वो तो उतने काल के वो भी उपशमित हो जाते, प्रथम उपशम समय को प्राप्त होने के बाद भी। ये नहीं वो बाई चांस हृदय में आ जाएगा ऐसी कोई चिंता नहीं करनी हमने। ये सब जो वस्तु व्यवस्था है जिनके फेवरेबल है वो मानता नहीं क्या करेंगे, वो कहता है मैं कुछ करूं तो फेवर हो जाएगा। ये मान्यता ही उसके लिए बीच बीच में गड़बड़ी करती है। 85 पेज देखो, उदय आदि होने को अयोग्य करना वो उपशम करना है पहली लाइन। यद्यपि अधकरण ही से यह जीव दर्शन का उपशमक ही है, उसको उपशमक कब से कहा, जब से करण लब्धि में एंटर हुआ तब से हमने उसको उपशमक कहा। एक्चुअली उपशमने का कार्य अंतर के बाद हो रहा है परंतु शुरू से उपशमक कहने में आता है क्योंकि सारा प्रोसेस शुरू हो गया उसका और वो रिवर्सिबल नहीं है, बीच में बिल्कुल उपशम करके रहेगा। तो दर्शन का उपशमक कब से होंगे, जब अधकरण शुरू हुआ करण लब्धि शुरू हुई तब से उसको उपशमक कहा। तथापि दर्शन होंगे प्रकृति स्थिति अनुभाव और प्रदेशों का निरवशेष परिणाम पूर्णता यहाँ उपशमक कहते हैं। क्योंकि हमने देखा पहले समय में कुछ उपशमित हुआ तो कुछ लूज अभी पड़े हैं, दूसरे समय में हुआ तो दूसरे समय में कुछ उपशमित हुए कुछ लूज है अभी, इस तरह से पूर्ण रूप से उपशम यहाँ पर हो जाए। अब नीचे 88 नंबर की टीका। प्रथम स्थिति में आवली और प्रत्यावली, यानी देखो ये प्रथम स्थिति जो अंतर्मूर्त है, अंतर्मूर्त तक क्या था, ऊपर से कुछ परमाणु आकर्षित होकर नीचे भी आ रहे थे, यहाँ मिथ्यात्व का बंध, ये प्रथम उपशम समिति की बात करते हैं वहां नहीं, मिथ्यात्व का बंध होने से इसमें से उदयावली के ऊपर से कुछ परमाणु ऊपर भी जा रहे हैं। तो ये जो नीचे आते हैं और ये अंतर को लान कर ऊपर भी जाते हैं, ये कार्य कब तक चलेगा, जब तक पहली स्थिति में दो अवली बाकी रहेगी तब तक ये ही पढ़ रहे थे।
कौन से बल जैसे कि ये नीचे के जो परमाणु या ऊपर की स्थिति का, तो वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते हैं तो उसकी स्थिति बढ़ेगी बाकी।
देखो उन परमाणुओं की स्थिति बढ़ेगी पर स्थिति तत्व से ऊपर नहीं बढ़ेगी एक बार, और परिणाम अभी यहाँ मिथ्यात्व तो हो रहा है और मिथ्यात्व का बंध यहाँ अंतर कोड़ा कोड़ी सागर हो रहा है और जिसकी स्थिति वहां तक जाने की है वो वहां तक जाएंगे। विशुद्धि तो और बढ़ रही है परंतु परमाणु में इसमें वो अप एंड डाउन जो होता है वो तो उसका सहज स्वभाव है। विशुद्धि के कारण भी हम उनका प्रमाण तो छीना नहीं हो सकता है, जहाँ संकले ज्यादा होते हैं वहां तो ऊपर चढ़ना ज्यादा होता है, उत्कर्षण ज्यादा होगा, और जहाँ विशुद्धि ज्यादा होती है वहां उत्कर्षित होने वाले परमाणु ज्यादा होते हैं। हम कुछ परमाणु ऐसे ऊपर नीचे होते ही रहते हैं,
ऊपर जाएगी और नीचे आएगी,
हाँ दोनों, कुछ परमाणु नीचे आते हैं कुछ ऊपर चले जाते हैं, ये सब चलता रहता है। देखो अभी इसमें प्रथम स्थिति में 88 की टीका, आवली प्रत्यावली यानी दो आवली काल जिसको उदयावली और द्वितीयावली में एक समय अधिक अवशेष रहे वहां आगाल प्रत्यागाल और मिथ्यात्व की गुणश्रेणी नहीं होती। क्या कहना चाहते हैं, अभी तक क्या हो रहा था, ऊपर से द्रव्य आकर्षित होकर नीचे आता था, इसको कहते हैं आगाल। यहाँ उदयावली के ऊपर के निषेकों में से कुछ परमाणु ऊपर भी जा रहे थे नए बंध के साथ, उसको कहेंगे प्रत्यागाल। ये आगाल और प्रत्यागाल चलता रहता था और जो वहाँ आकर्षित द्रव्य थे वो गुणश्रेणी रूप से ही दिया जाता था यहाँ। अब जब दो आवली बाकी रही अब ये गुणश्रेणी रूप से देने का कार्य मिल जाएगा, अब यहाँ आगाल भी रुक जाएगा और प्रत्यागाल भी रुक जाएगा।
जो बाद में भी आगाल में जो गुणश्रेणी रूप से दिया जा रहा था उसमें भी जो गलिताविशेष भाग था उसका तो वो तो अंतर में आ चुका था।
गलिताविशेष नहीं, उसको गुणश्रेणी शीर्ष कहते हैं,
गुणश्रेणी
शीर्ष तो निकल गया था पर रिमेनिंग नीचे गुणश्रेणी रूप से प्रथम स्थिति जो है वो गुणित प्रमाण में गुणित श्रेणी रूप से ही थी, और उसमें जो ऊपर से आकर्ष द्रव्य गुणित प्रमाण में ही लिया जाता है अभी भी, पर वो कब तक होगा, दो अवधि तक, अभी उसके बाद नहीं, वो सब रुक गया। ऊपर से आकर्षित होकर नीचे दिया जाना, क्योंकि ऊपर के भी कितने फ्री है परमाणु, अरे सारे उपशमित होते होते अभी बहुत कुछ कम बचे हैं, तभी वो आकर्षण भी रुक गया है, केवल अभी नीचे दो अवली प्रमाण काल शेष रहा, एक अवली और उसके ऊपर की अवली। अब क्या होगा, ऊपर के अवली के परमाणु नीचे के अवली में आ जाए, जिसको गिरना थी, इतनी ही होगी बात, और एकदम अंतर के ऊपर से जो आते थे वो नहीं आएंगे अभी, वो रुक गया, यही कह देना। दर्शन हो बिना अन्य कर्मों की गुणश्रेणी होती ही है, सब में गुणश्रेणी चल रही है, ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्य जो कर्म है उनमें गुणश्रेणी चल रही है। दर्शन होने में अंतर पड़ा रहा है, अभी उसमें वो आगार प्रत्याघात भी रुक गया है, अभी यहाँ गुणश्रेणी रूप से कुछ रचना नहीं हो, जो है वो प्रथम स्थिति वो गल जाएगी। वहां मिथ्यात्व की उदयावली में निक्षेप करने को केवल उदीर्णा ही होती है, दो आवली में से ऊपर के आवली के परमाणु नीचे के आवली में होगी, इतनी उदीर्णा होगी। जब तक एक आवली और एक समय ऊपर का निषेध बाकी है तब तक उदीर्णा चलेगी, जब आवली मात्र निषेध रह जाएगी और वो एक एक करके उदय में आकर निकल जाएगी, अभी यही यहाँ लिखा है। अभी पेज नंबर 86 पर आना, यहाँ क्या कह रहे हो, यानी जो अभी हमने छोड़ा उसमें यही बात लिखी है कि दो आंगली बाकी थी तो ऊपर से नीचे आते थे, उसमें से एक एक समय नीचे से गल गया, तो उदय आंगली उसी को कहते हैं जो उदय के समय से आंगली प्रमाण, तो ऊपर की आंगली छोटी छोटी होती चली जाएगी, उसको उदय आंगली में एंटर होती जाएगी, एक पोजिशन ऐसी आएगी कि जब केवल आंगली मात्र निषेध बाकी रहे, अब उसके ऊपर कुछ द्रव्य ही नहीं है तो नीचे उदीर्णा कैसे होगी, तो उदीर्णा भी रुक गई, अब मात्र एक आंगली प्रमाण निषेध बाकी है, मिथ्या एक एक समय में एक एक निशे उदय में रूप आकर खिलेगा, यहाँ तक पोजिशन ख्याल में है। हाँ, अब उसके आगे क्या होता है देखो, इस तरह 89 की टीका, इस तरह अनिवृत्तिकरण काल समाप्त होने पर, यानी यहाँ नीचे से पहले अंतर्मूल था, फिर दो अवली बाकी रहा, फिर एक अवली बाकी रहा, वो सब मिल गया, यानी यहाँ कुछ नहीं रहा, ये सब अभी उदय में आकर निकल गए, तो जीव अभी यहाँ ये समय आ जाए, यहाँ भी नीचे कुछ निषेध नहीं है, और अभी यहाँ पोजीशन क्या है, ये समय चल रहा है, यानी नीचे के है ना वो तो मिल गए ऐसा समझ लो आप, ये सब उदय में आकर फिर गए, अब पोजीशन क्या है, अंतर का पहला समय ये प्राप्त हो चुका है, अब ये औषमिक समय का पहला समय अब है, अंतर किया तब नहीं हुआ था, ये कहते देखो उसके अनंतर अंतर आयाम के प्रथम समय को प्राप्त हुआ है, उसका भी वर्तमान समय वो हो गया जो अंतर आयाम का पहला था समय, उस समय होते ही दर्शन मोह और अनंतानुबंधी चतुष्क के प्रकृति प्रदेश स्थिति और अनुभव इनका समस्त अपने उदय होने अयोग्य उपशम होता है, जो दर्शन मोह में जो उपशम हुआ है वो प्रशस्त उपशम है जो अंतरकरण वाला, अनंतानुबंधी के निषेध यहाँ पड़े हैं परंतु वो अन्य रूप होकर उदय में आ रहे हैं, दोनों को उपशम कह रहे हैं, हम उपशम के टाइप में अंदर है होने से तत्वार श्रद्धानुरूप औषमिक समय दर्शन को पाकर यह जीव औषमिक समय दृष्टि होता है, ये पहली बार उसके उस समय में उसको औषमिक समय तो की प्राप्ति होगी, अभी वो समय दृष्टि हुआ था हुआ ना अभी पहला समय आया ना वहां प्रथम समय में द्वितीय स्थिति में स्थित मिथ्यात्व द्रव्य को स्थिति कांड के अनुभाग कांडक भाग देना, अभी उसके स्थिति कांडक अनुभाग कुछ नहीं हो रहे, वो तो कुछ रुक गए थे पहले ही, गुण संक्रमण का भाग देकर तीन प्रकार परिणमता है, यानी अब जब अभी तो केवल मिथ्यात्व एक ही द्रव्य था, अब जब प्रथमोपशम समय का पहला समय आया तब उसने वो उपशमित द्रव्य को तीन प्रकार परिणमा, द्रव्य ऑलरेडी उपशमित है वो मिथ्यात्व में से समय मिथ्यात्व और समय प्रकृति, इस तरह से तीन प्रकृति प्रति समय वो असंख्या गुणा क्रम से परिणमित होती रहती और तीन प्रकृतियों की सत्ता हो जाती, अंतर्मूल तक गुण संक्रमण रूप से वो होती है जिसको कहेंगे वहाँ गुण संक्रमण होता है, बाद में थोड़ा वो तो स्लो डाउन हो जाता है, तब कहेंगे बाद में औक्षणिक का ही काल है, वो विद्या संक्रमण होता है। इस तरह से प्रथम औक्षण सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई। अब यही रुकेंगे, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो गई है। बोलो 2400 भगवान की।